देखो ये बात समझने की एक थोड़ी सी बात समझनी है। जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड के त्याग से प्राप्ति बाकी रहती नहीं। अब किसी बात को आप ठीक नहीं है, ये प्रणाली है कि इसमें जड़ का कैसे त्याग करोगे, मन की जरूरत होगी, बुद्धि की जरूरत होगी, बाहर के आसन वासन जरूरत होगी, कई चीजों की जरूरत होगी। जड़ की नाशवान की आवश्यकता के बिना कोई भी क्रिया कर सकते हो? पदार्थों को बोध होने से पदार्थ छूटते जावे, ये बात है क्या? वास्तव में पदार्थों को बोध क्या है? बोधार्थ देखो, एक मार्मिक बात बताऊं, अगर आप प्रकृति प्रकृति पदार्थों का बोध चाहते हैं तो इनसे अलग होने से होगा, इनके मिले हुए इनका बोध नहीं होगा। उस परमात्म तत्व को चाहते हैं तो उस तत्व से अभिन्न हुए बिना उसका बोध नहीं होगा। जैसे दो मैंने पहले बात बताई, मनु जड के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे उस चेतन में जड की जरूरत नहीं, जड की ताकत नहीं तुम्हें प्राप्त करा रहे, ऐसे ये दो बात आपको कहता हूं मैं कि जड़ के साथ रहते हुए उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं के साथ रहते हुए उत्पत्ति विनाशशील तत्व को जान नहीं सकते। जड़ के साथ रहते हुए जड़ का बोध नहीं होता, उस चिन्मय तत्व के साथ अभिन्न हुए बिना उसका बोध नहीं होता। जड़ के साथ संबंध रखते हुए चिन्मय तत्व का बोध नहीं होता और चिन्मय तत्व के एकता हुए बिना चिन्मय तत्व का बोध नहीं होता और संसार से अलग हुए बिना संसार का बोध नहीं होता। और बोध होते ही संसार अलग हो ही जाता है, साथ रह नहीं सकता। अब इस पर शंका करो,
तरीका
तरीका है, बहुत ही बढ़िया बात है। कृपा करके जैसे प्रश्न पूछा है वैसे ही आप बात को माने, अब न मानने में और शंका करें। नारायण नारायण नारायण, एक तो अपनी चाहना कुछ भी न रखे, कुछ भी चाहना न रखे, और एक बिल्कुल चुप हो जाए, अप्रयत्न हो जाए, न बाहर से कोई क्रिया हो न भीतर से कुछ चिंतन हो, ये दो बात है। ऐसा होते ही आपकी स्थिति चिन्मय तत्व में हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? कि चिन्मय तत्व को बनाना नहीं है, वो तो है। जब तक हम चाहना रखते हैं मन से तो भविष्य के पदार्थों के साथ संबंध होता है, और अभी इन चीजों के साथ रखते हैं तो वर्तमान में जड़ के साथ संबंध होता है। तो चाहना नहीं रखकर प्रयत्न भी ना करें तो ना वर्तमान पदार्थों के साथ संबंध होगा ना भविष्य के पदार्थों के साथ संबंध होगा, और चुप हो जाएंगे तो आपकी स्थिति कहाँ होगी? चिन्मय तत्व में होगी। ये उपाय है, नहीं छूट आप क्या होगा बताओ?
और तो जगह नहीं है,
तो अप्रयत्न हो जाए, तो अप्रयत्न होते ही यहाँ के मन बुद्धि के साथ में संबंध नहीं रहेगा। कामना कोई चाहना नहीं हो तो भविष्य के साथ पदार्थों के साथ संबंध नहीं रहेगा। जड़ता का संबंध छूट गई, चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः होगी, क्योंकि वो है, वो बढ़ाना नहीं है, उनको लाना नहीं है कहीं से। अब इसमें शंका करो खूब, बड़ी भारी कृपा मानूंगा आपने। जो बात समझ में नहीं आती, जैसे आपने पहले कही कि समाधि लगा लो तो भी बुद्धि वो वास्तविक तत्व का अनुभव नहीं होगा। और साधन है जरूर, समाधि लगाना है साधन है, जरूर मैं साधन मानता हूँ, पर समाधि है वो काल शरीर के संबंध से होती है, चिंतन ध्यान सूक्ष्म शरीर के संबंध से होता है, बाहर की क्रिया स्थूल शरीर के संबंध से होती है। स्थूल सूक्ष्म और काल साथ में रहेंगे शरीर, तब शरीर से अतीत की प्राप्ति कैसे होगी?
जैसे पहले अपने स्थूल शरीर से सूक्ष्म में जा रहा है, सूक्ष्म से समाधि से काल में जा रहा है,
आप इसको क्रम क्यों रहो? अब भी सही आप प्रयत्न और आशा हो जाओ, इतना रास्ता लंबा नहीं है। चिन्मय तत्व सर्व में परिपूर्ण है, जो का क्यों परिपूर्ण है, जो का इस बात से धीरे धीरे करेंगे तो धीरे धीरे करो, आपकी मर्जी है, परंतु उसकी प्राप्ति के लिए हम सूर से सूक्ष्म में जाएंगे, सूक्ष्म कारण से जाएंगे। मैं तो एक साथ में प्रसमन छूटता है ना, अचा होने से और अप्रयत्न होने से। हाँ तो अपने होने के लिए करो तो सेवा करो, अगर अप्रयत्न होने के लिए अचा होने की सेवा कर तो प्रयत्न करना है तो सेवा करो। जो दुख एक दिन दुखियों की और एक पूजनों की सेवा करो, पर चाहना मन में कुछ भी ना रखो, थोड़ी भी चाहना रखे तो व्यापार होगा, सेवा नहीं होगा। ध्यान देना होगा, हम सेवा करेंगे उससे उठ रहेंगे। नहीं लेना है विद्या, नहीं लेना है गुरु जी से, गुरु जी से तो केवल सेवा कर देना है, यही बात है। और सेवा गुरु जी से कुछ भी इच्छा नहीं, मैं देख रहा हूँ मुक्ति की इच्छा भी नहीं, ज्ञान की इच्छा भी नहीं, ध्यान की इच्छा भी नहीं, बोध की इच्छा भी नहीं, केवल सेवा करनी है उनकी। उनको सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इच्छा तो बनाओगे तो संतन के साथ संग रहेगा, रहेगा ही। आप बताओ इच्छा रखोगे जड़ के साथ समझ कैसे नहीं रहेगा? मैंने एक बहुत विशेष बात कह दी कि मुक्ति की भी समझ रखो, मामूली बात नहीं कही है मैंने, केवल सेवा करो। और सेवा करने भी क्या, उनकी जो आवश्यकता हो वो काम कर दो। संसार मात्र में जो आवश्यकता हो और आप कर सकते हो कर दो, सहायता कर दो, सहायता कर दो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से जो कुछ आपके पास है उससे केवल उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सहायता कर दो। ये सेवा बहुत सुगम रास्ता है।
हाँ देखो
अब अभी कौन सा बताता था, अगर फायदा करना है बस ये कहूँ फायदा होता है, स्वतः सिद्ध की बात बता रहा हूँ। परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है,
मुक्ति तो आपसे
आप
ही है, उसका मुक्त होना क्या है?
उसका
मुक्त होना तो बनता नहीं है,
वो तो अपने आप स्वयं मुक्त है। मुक्त है पर चाह ना करते है ना, और संबंध रखते हैं, ये बंधन है। मन में चाहना है ना सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले,
तो उसकी मुक्ति के लिए फिर हम साधन क्यों करें? मुक्त हमको समझ में आ गया तो
समझ में आ गया तो आप इच्छा न कोई नहीं रही था, मन में चाह न कोई नहीं रही, जीने के लिए उठती नहीं तो जितनी है तो बाल देगी ही। देखो झरना डूबता है ना आदमी, जो डूबे के ऊपर एक रस्सी भी ऊपर आ जाएगी तो ऊपर ही आ सकेगा। थोड़ा सा भी बंधन तंतुओं से कोरे तंतु है ना दोहरा, उससे भी बंधा हुआ होगा तो जस ऊपर ही आ सकेगा। थोड़ी भी इच्छा होगी तो संसार से ऊपर आ सकता ही नहीं। इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, त्याग में त्याग से तो होगी सेवा, सेवा बिना त्याग के कर ही नहीं सकते कोई, त्याग नहीं है सेवा कैसे करेगा। आराम का त्याग नहीं करेगा, वस्तुओं का त्याग नहीं करेगा, अभिमान का त्याग नहीं करेगा सेवा करने वाला, अभिमान लेकर सेवा कैसे करेगा। शुभ होगा त्याग नहीं करेगा तो सेवा कैसे करेगा, वस्तुओं का लोभ हो तो सेवा कैसे करेगा, शरीर से आराम चाहता है तो सेवा कैसे करेगा, बताओ। सेवक सुख चाहे मान भिखारी, सेवक सुख कैसे होगा, सुख चाहे सेवा कैसे करेगा। अपने सुख की इच्छा सर्वथा त्याग करके सेवा करो, जो कर सकते उतने ही, ज्यादा नहीं जरूरत नहीं है, जितने आपको सामर्थ्य उतने। जब तुम सेवा नहीं करोगे और मन से इच्छा रखोगे तब तो बंधन होगा, कारण घुसंगो इसलिए सदस्यों जन्म सु उस योनियों में जन्म होने का कारण गुणों का संग है, और वो संग है विषय की चाहना से। बाहर से छोड़ देने का नाम त्याग नहीं है। अगर बाहर से छोड़ने का नाम त्याग हो तो मरने वालों की सबकी मुक्ति होनी चाहिए। तुम बाहर से छोड़ दिया, सभी कुटुंब छोड़ दिया, शरीर छोड़ दिया, धन छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, तो सबके संबंध इच्छे की उनसे कल्याण हो जाएगा ये नहीं होगा, और मन से कुछ भी नहीं चाहना होगा तो कल्याण नहीं होगा, तो क्या होगा।
उसमें
साधना की
कोई जरूरत नहीं,
चाहना
मिट गई,
साधन साधन का बाप है ये, साधन करोगे तो जड़ का सहारा लेना ही पड़ेगा। आप इतने बैठे हो, कोई बताओ कि हम करेंगे कुछ और सहायता नहीं रही करता, बताओ। उत्पत्ति विनाशशील का सहारा लिए बिना कोई भी क्रिया कर सकते हो, बताओ। मानसिक नहीं कर सकते, वास्तविक नहीं कर सकते, शारीरिक नहीं कर सकते, बिना जड़ की सहायता के आप सही से क्या काम करोगे, बिना जड़ता की सहायता लिए मन से क्या चिंतन करोगे, क्या करोगे, और स्वयं से क्या करोगे। कुछ न कुछ करना होगा तो उत्पत्ति विनाशशील वस्तु का संग करना ही पड़ेगा, उसकी सहायता लेनी ही पड़ेगी। इनकी सहायता न लेना साधन कम नहीं है, महान साधन है। कुछ भी इच्छा नहीं रखना और अपना प्रयत्न कुछ नहीं करना, आत्मसंस्तु मन कृत्वा न किंतु चिंतित, समय समय ऊपर रमयित, बुद्धिया धीगृहितया बुद्धिया, बुद्धि में धैर्य चाहिए और ऊपर आम हो जाए, ऊपर रमय आत्मसंस्तम एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है, ऐसे करके वह उसका भी चिंतन न करें। परमात्मा है इसमें स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें, अत्यंत इसी समान कोई ध्यान कोई समाधि है ही नहीं, समाधि लगाओगे आप तो उसमें समाधि लगाओ मन को एकाग्र करना पड़ेगा। आपको गीता के श्लोक बताऊं तो बड़ा ध्यान देना इन बातों पर। एक श्लोक है प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना पुष्ट स्थित प्रज्ञते। एक तो ये है और एक श्लोक है यदा विनियतम चित्तम आत्मनैवावतिष्ठते निष्प्रिय सर्व काम युक्त इत्युक्ते तदा। तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान मनोगत कामनाओं का संपूर्ण का त्याग दे प्रजाति प्रकृति जाति किंचित मात्र भी मनोगत कामना न रखे तो क्या आत्मनिय तुष्ट अपने आप से अपने आप तुष्ट होगा स्वतः स्वाभाविक अपने आप और क्या होगा। बस मनोगत कोई कामना नहीं है तो क्या होगा कहाँ स्थिति होगी आपकी। हाँ तो प्रकाश चंद्र रहेगा नहीं
आप क्या
बताना अच्छा यदा विनियतम चित्तम ये जो समाधि लगाना है ना ये चित्त को लगाना है बार बार चित्त लगाना विजातीय बातों का तिरस्कार कर सजातीय वृत्तियों का प्रवाह करना ये निर्ध्यासन है आपका। और निर्ध्यासन की परिपक्व अवस्था ध्यान होता है और ध्यान की परिपक्व अवस्था समाधि होती है। तो इसमें चिंतन करना पड़ेगा ना तो विनियतम चित्तम आपका नियत किया हुआ भस्म के बाद चित्त आत्मनि एव अवतिष्ठते केवल आत्मा में ही स्थित होता है आत्मनि एव अवतिष्ठते और निष्प्रिय सब कामे भी हो और संपूर्ण कामनाओं से निष्प्रिय हो जाओगे तो आपको युक्त कहेंगे योगी कहेंगे। अभी दो श्लोक है सामने रखो तो प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कामना को त्यागपण आत्मनिव आत्मतुष्ट होगा। और आप चित्त को लगाओ तो यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते केवल आत्मा का ही चिंतन हो और कुछ भी नहीं चिंतन नहीं होगा केवल आत्मा का ही। क्या है नहीं मैं कहूँगा बात समझो पहले मनो यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग सेवया योग की सेवा से चित्त निरुद्ध हो गया चित्त की देखो क्षिप्त विक्षिप्त मूल एकाग्र पांच भूमिका है चित्त की तो निरुद्ध से ऊंची भूमिका नहीं है चित्त की योग चित्त वृत्ति निरोध निरोध हो गया उसमें ही केवल आत्मनि एव अवतिष्ठते तो क्या होगा कनिष्ठ सब काम है संसार की कामनाओं से बिल्कुल विपर हो जाओगे आप जब छूट जाएगी भी जब परमात्मा में ही चित्त होगा तो प्रजन छूट जाएगी निष्प्रिय सर्व काम है युक्त इच्छु से उस समय में योगी कहलाता है वो योगी होगा परंतु उस समय में आत्मनि तो तुष्ट नहीं होगा तो वहां आत्मनि आत्मा तुष्ट है यहाँ तुष्ट नहीं है ध्यान देना यदा विनियतम चित्तम आत्मनि एव अवतिष्ठते निष्प्रिय सर्व कामेभ्यो युक्त स्थिति तथा यथा दीपो निवास कैसी वृत्ति होगी कि जैसे निवास वायु रहित जगह में लगाया हुआ दीपक है उसकी लो इधर उधर नहीं होती एकदम रहती है ऐसे उस परमात्मा तत्व में वृत्ति रहेगी ठीक तरह से। तो कैसे शो
बोला
यथा रहित दीपो निवास नहते सोपमा सूचा योग नो यंत्र से युंजतो आत्मा आत्मना है योगम युंजत है योगी न चित्त से उपमा स्मृता जो परमात्मा में मन लगाता है उसकी चित्त की उपमा ये बताई दीपक की तरह योगी सदात्मान योगी विगत कर सदा ऐसा योग करता हुआ सदा ऐसे करता हुआ योगी जिंदगी सदात्मा योगी नियत मानस उपरी शांत ब्रह्मभूतम ब्रह्मभूत हो गया ब्रह्म स्वरूप हो गया उसमें अनुभव हुआ मैं ब्रह्म हूं ऐसा होगा अगर मैं कोई पाप नहीं रहा उसमें फिर क्या होगा ब्रह्मभूत में कर्म सम ब्रह्मभूत में कर्म सम सदात्मा योगी विगत कर्म सर सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुगम स्मय सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम ब्रह्म स्पर्श की अत्यंत सुख हो जाएगा उसको ब्रह्म स्पर्श हो जाएगा स्पर्श प्राप्त हो जाएगी आप ध्यान बताते हैं ध्यान समाधि की प्रक्रिया बताई मैंने तो ब्रह्म अत्यंतम सुगम स्मय सर्वभूत समात्मा सर्वभूता ने चाहती मैंने ईश देवी योग चाहता सर्वदा समदर्शन तो क्या होगा उस स्थिति कि सर्वभूत आत्मा ऐसा अनुभव होगा संपूर्ण भूत में मेरा स्वरूप स्थित है संपूर्ण प्राणी जड़ हो चेतन हो सावर हो जंगम हो संत महात्मा हो दुष्ट हो पापी हो अन्यायी हो कसाई हो सत्व के जीवन मुक्त हो सब में अपने स्वरूप को देखेगा अपने सर्वभूत आत्मा न सर्वभूतानि से आत्मा नहीं संपूर्ण भूत आत्मा में देखेगा इससे योग सर्वत्र समझ सर्वी समझेगा योगाम प्रसिद्ध सर्वत्र इसके बाद अपने आप को देखा अब यो माम प्रसिद्ध सर्वत्र सब जगह मेरे को देखता है सर्वंज मई प्रसिद्ध सबको मेरे में देखता है सबको सब में मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता मन परमात्मा में सब है सब में परमात्मा ऐसा देख इसके बाद ये स्थिति होगी अब और क्या होगा कि नहीं ये सूट के बीच एक ब्लू सूट जिनने सदात्मा नहीं होगी बुद्ध सुगेन बुद्ध तत्व सर्वभूत सुधार जनो नहीं यदा विनियतन से तुम आत्मनिर्वावशिष्ट निष्प्रिय सर्व कामे भी युक्त स्थिति तथा लिंग से सोपमा स्मृता योगी आत्मात्मा यो ब्रह्म से तुम सूर्य श्लोक उपरमते से तुम वृद्धम से योग देविया ऐसा सेवात्मा प्रसन्न आदमी तुच्छ थी किसी वहां तो आत्मनिर्भर आत्मा तुष्ट पैदा हो गया और यहाँ क्या हुआ कि निरुद्ध चित्त है जो आत्मनिष्ठ है सर्व काम ऐसे होने पाद में उसमें स्थित हो गया यदा विनियतम चित्तम निरुद्धम योग से उपरमते चित्तम चित्र उपराम हो गया निरुद्ध हो गया निरुद्ध वृत्ति हो गई बिल्कुल कुछ भी चिंतन नहीं होता रुक गए एकदम से हाँ तो वो जो चित्त रुक गया है सभी निरुद्ध योग से ये तो सिर्फ आत्मना आत्मा नश्चन आत्मा तो अपने आप में चुष्ट होता है अब चुष्ट हुआ है ज्ञान समाधि की प्रक्रिया से अब चुष्ट हुआ है और कामनाओं के त्याग से जब सर्वथा कामना त्याग है आत्मनिर्वाण स्पष्ट हो जाएगा तो इसी को तो नहीं पड़ता है
सर्वथा कामना का त्याग होना और अचार होना और अप्रयत्न होना बिना साधन के संभव है
ना साधन होगी ये साधन है ना हाँ यही साधन है अच्छा इसमें साधन करना हो तो लिखा है यतु निश्चरती मन संचल मत्सरम तपस्तु नियम आत्मनिर्वसन नहीं जहाँ जहाँ चित्त जावे वहाँ जाकर एक परमात्मा में लगा है अथवा जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा को देखे साक्षात ये दो बात में से कुछ ही बात करो सा दोनों कर दो सावधान रखना होगा चित्त खुला छोड़ दोगे तो वृत्तियों का प्रवाह तांता लग जाएगा फिर दूसरी बात चिंतन होगा परमात्मा चिंतन नहीं होगा परमात्मा का ही चिंतन करोगे तो दो बात होगी बार बार चित्त गया और फिर लगाया परमात्मा बार बार गया और फिर लगाया ये साधन है अथवा जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा है ये करो ये दो बात करनी होगी अगर अभ्यास आपको करना है ऐसी स्थिति के लिए तो ये अभ्यास करना है, परमात्मा में लगाओ और फिर न लगे कहीं जाए तो वहाँ परमात्मा है। सच्ची बात है, परमात्मा कहाँ नहीं है बताओ। पत्थर याद किया, वृक्ष याद किया, गाय को याद कर दिया, मैला कुचेला पड़ा हुआ है, हड्डियां है वह बन गया, तो उसमें परमात्मा है। जहाँ बन जाए उसमें परमात्मा है, चाहे तो हटाकर परमात्मा में लगाओ और चाहे जहाँ जाए वहां परमात्मा को ही देखो। ये सावधान रखना होगा। ये तो निश्चल थी मनस चंचलम अस्थिरम तपस्त तो नहीं मेरे आत्मदेव प्रसन्न नहीं प्रशांत मन समेनम। ये प्रशांत मन हो जाएगा। योग इनम सुगम उत्तम कोई शांत रज सम ब्रह्म भूतम अगर्म सम और शांत रज वो ब्रह्म रूप वो फिर प्राप्ति जन परमात्मा के रूप है। जड़ता के द्वारा नहीं हुआ, जड़ता के त्याग से हुआ है। पहले मैंने कहा समय समय ऊपर रमेत आत्मसंस्थित मन के द्वारा न के चिंतित, ऐसा नहीं हो तो क्या करे, ये प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर दिया मैंने, ऐसा न हो तो क्या करे, उसके लिए अभ्यास बताया कि ये तो निश्चलती कमा से। तो वास्तव में जड़ के द्वारा नहीं होता है, जड़ के त्याग से होता है। त्याग की जरूरत होता, त्याग किया ना, तो त्याग में क्या किया कि परमात्मा में ही लगाए मन को, अथवा जहाँ मन जाए वहाँ परमात्मा को ही देखे, ये अभ्यास हुआ, इसको अभ्यास कहते हैं। और मन के लगाने को योग मन में लगाया कहाँ पर, यहाँ है तो परमात्मा में लगाना, जहाँ जाओ परमात्मा में लगाना, तो परमात्मा में चित्त लगाने की बात हुई। ये लगाते लगाते जब चित्त उपराम हो जाए, आपने कहा कि उपराम नहीं हो आत्मनिये आत्मना तो उसमें नहीं हो तो पहले क्या करे, तो उसके लिए उपाय बताया मैंने। ये वो पहला उपाय नहीं बताया है, पहले तो केवल परमात्मा तत्व तो में मन लग जाए, कामना कुछ न रखे और प्रयत्न कुछ न करे, ये उपाय बताया पहले। कोई कामना नहीं, कोई चाहना नहीं किसी तरह की, मैं और तो क्या हूं, मुक्ति भी चाहना नहीं। अब जरूरी उपेक्षा कर दो, उसके विरोध मत करो, ये बहुत मार्मिक बात है। आप विश्वास करो कि एक बात बताऊं, मैंने ऐसे बहुत फोड़ा देखा है और मैंने किया है, इसमें जल्दी सिद्धि नहीं होती है। ये नहीं करने के लायक बात कही आपको, अपने साधन की बात बतानी नहीं चाहिए। मैं भी निषेध करता हूं, वो बात मैंने कही है। किस बात पर?
स्फूर्णा
होती है
ना,
स्फूर्णा होती है, ना तो राग करना, तो द्वेष करना, ना अच्छी समझना ना बुरी समझना, बढ़िया से बढ़िया बुरा हो तो अच्छा नहीं समझना, अरे बुरी ही बुरी बुरी नहीं समझना, और उसमें मतलब नहीं है उपराम हो जाना। ये मन एकाग्र करने वालों को इस युक्ति का पता नहीं है। मैं बड़े जोर से कहता हूँ, मैंने पुस्तक बहुत पढ़ी है और मन लगाने की कोशिश भी की है और मैंने पूछा है, प्रश्नोत्तर किया है, बरसों माता बसी करी है मैंने, तो मन लगाने की अटकल नहीं है। बार बार लगाते हैं, जिस विषयों का त्याग करते हैं उस विषय की दृढ़ता होती है। एक बात सुन लो, मेरी बात सुन लो पहले, तो वो उपराम हो गए जिससे मन हटाओगे तो हमारे संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए तो इससे संसार का चिंतन दृढ़ होगा। मार्मिक बात है ये, इधर दृष्टि नहीं जाती है साधक, क्योंकि जब उसको दृढ़ नहीं मान लेता हटाते किसको, अचानक अर्थ होगा दृढ़ है वो, तो उल्टी दृढ़ता होती है, उल्टी दृढ़ता होती है तो साधु को पता नहीं लगा, उस समय मैं हटाता हूँ। अगर हटाता है तो है जब हटाते हूँ, नहीं होता हटा हो क्या, इस बात से उपराम होना सत्ता दे दी। हाँ तो सत्ता दे दी तो दूर कैसे होगा, सत्ता दूर होगी क्यों, जो हटाने का मन करोगे क्यों दृढ़ होगी सत्ता उसकी, दृढ़ बने तब जो हटाओगे, नहीं हटाओगे क्यों। तो ये उपाय नहीं है, उपराम होना उपाय है। मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली ये बात, विरोध से नहीं होगा, नाराजी होने से होगा ना नाराज होने से होगा, उपेक्षा उदासीन हवा आई लड़ाई चली, ऐसे कोई विचार आया चला गया, अपने कुछ उसमें मतलब नहीं, कोई अच्छा समझना ना बुरा समझना ना हटाना लगाना, लाना ही नहीं लगाना भी नहीं, उपराम समय समय उपराम बुद्धिया दृढ़ धैर्य रखता हुआ उपराम हो जाए। तो उपराम होने में मन लगाना नहीं हुआ है, मन की वृत्तियों से भूलना से उपराम हुआ है, बस उसे छोड़ना है। तो छोड़ने में भी सत्ता आती है, छोड़ो उसको तो छोड़ने में भी सत्ता आती है, उपराम हो जाए, कुछ मतलब लेन देन नहीं है अपने, कोई मतलब नहीं, ना बस ना अच्छा समझना ना बुरा समझना, ना विरोध करना ना आसक्ति करना, राग करना ना द्वेष करना, उपराम हो जाना, उसे कुछ मतलब नहीं है। तो ये वृत्ति जितनी वृत्ति को शुद्ध करेगी इतनी उद्योग शुद्ध नहीं करेगा। नारायण नारायण नारायण
राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा दिनांक 5 अगस्त 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।